سلام جناب شائستہ.
سلام انسپیکٹر.
کیا خبر ہے؟
امید ہے تم یہ نہیں کہو گے کہ یہاں سے گزر رہا تھا اس لیے سوچا ملتا چلوں.
معاف کریں, میری رنگوں کے سلسلے میں نظر تھوڑی کمزور ہے. نیلا آسمانی رنگ اسی کو کہتے ہیں نا؟ میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ اس طرح کی گاڑی خرید سکوں.
یہ گاڑی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 30-40 لاکھ کی ہوگی.
کیا یہ آپ کی گاڑی ہے؟
نہیں, میری بیوی کی تھی. اور کچھ
دوسرے یہ کہ کوئی آپ کا 60 ملین کا مقروض ہے.
میرا
ایک آدمی ہے متین نام کا.
تم شہر میں میرا قرضہ ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟
شہر میں احمد رضا کو ڈھونڈ رہا ہوں, حقیقت ڈھونڈ رہا ہوں. آپ کی زمین جناب شائستہ وقف کی نکل آئی ہے, ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ بات جانتے تھے, ٹھیک ہے؟ کہیں جانا نہیں چاہیں گے؟
آدمی جب کبھی پریشان ہوتا ہے تو اس کا دل گھبراتا ہے. ایسے کے لیے جس کو وہ چاہتا ہو اور وہ اس سے دور چلا گیا ہو تو اس کی کسی بھی چیز کا سہارا لیتا ہے. میں بھی اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد گھر جانے سے پہلے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کی یاد تازہ کرتا ہوں. مجھے احساس ہوتا ہے کہ ابھی تک اس کی خوشبو اس گاڑی میں ہے, سٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کا احساس. ہاں, زمین وقف کی نکل آئی.
کب پتہ چلا؟
میری بیوی کا آخری وقت تھا جرمنی میں.
کب پتہ چلا؟
احمد رضا نے مجھے بتایا تھا, فون کیا تھا. پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا, سوچا ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. پھر میں نے اپنے بھانجے کی انوش کو کہا کہ معاملے کی ٹھیک سے چھان بین کرے اور پتہ لگائے کہ حقیقت کیا ہے. ہاں, زمین وقف کی نکلی. میں سمجھ گیا کہ سند میں ہیر پھیر کر کے مجھے زمین بیچ دی گئی ہے.
کس نے جعلی سند بنا کر بیچا تھا؟
ایک پرانا پارٹنر تھا, میری بیوی کے بھائی کا پارٹنر تھا. اس نے کہا وہ میری بیوی کے چچا کا وکیل تھا. اس کا چچا انقلاب کے بعد بھگوڑا فوجی افسر تھا. وہ زمین کے کاغذات بنوا کے لایا تھا. میں نے بھی اشتہار دیا. مجھے اطمینان دلایا کہ پریشانی نہیں ہوگی, مگر پریشانی ہوئی. جعلی کاغذات بنوائے گئے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ پرانا پارٹنر قرض میں ڈوبا ہوا تھا. اس پر لوگوں کا انکم ٹیکس کا قرضہ تھا. وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا تھا.
آپ نے اس کے خلاف شکایت کیوں نہیں کی؟
شکایت کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ انوش نے اسے بہت جلدی ڈھونڈ نکالا, 2 دن بعد ہی.
اچھا, تو وہ کہاں تھا؟
اس کی لاش ایران عراق سرحد کے پاس پڑی ملی تھی. ظاہراً ایران سے چوری چھپے بھاگ رہا تھا. شاید سمگلرز نے بھانپ لیا تھا کہ اس کے پاس زیادہ ڈالر ہیں, اس لیے گلا گھونٹ کر مار دیا. یہ باتیں اس کے بھائی نے کہ انوش کو بتائی تھیں. 2 دن بعد احمد رضا نے بتایا کہ فلیٹ کے خریداروں کو اصلیت پتہ چل گئی ہے. وہ سمجھ گئے ہیں کہ زمین وقف کی ہے. کہ انوش نے بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے آفس میں آ کر ہنگامہ مچایا ہے. اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وقف بورڈ کی طرف سے لوگ آئے ہیں اور دھوکہ دینے والوں میں میرا نام بھی لیا جا رہا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب چال بازیاں احمد رضا کے ذریعے انجام پائی ہیں.
ये सब चालबाजियां अहमद रजा क्यों करता?
इसलिए कि मेरी ताईद लेकर मेरे अकाउंट से पैसे निकाल सके।
क्या पैसा नहीं निकाल सकता था?
वो सिर्फ तनख्वाह भर के पैसे निकाल सकता था। मैंने तनख्वाह के उन्वान से उसके नाम अकाउंट खुलवाया था। 100 मिलियन उसके अकाउंट में डलवा दिए ताकि वो वर्करों की तनख्वाह दे सके, बिल्डिंग मटेरियल की अदायगी मेरे असली अकाउंट से ही मुमकिन थी। उसे अकाउंट में कस्टमर का पैसा डाला जाता था। उस अकाउंट से पैसा निकाला नहीं, सिर्फ डाला जा सकता था। जर्मनी से ही फैक्स के जरिए अहमद रजा की दस्तखत बैंक को भेज दिया ताकि अकाउंट से पैसा निकाल सके और लोगों का पैसा उनको वापस कर दे। जब मैं ईरान वापस आया तो पता चला कि कोई भी कस्टमर नहीं समझ पाया था कि जमीन वक्फ की है। ये ऐसी चाल थी जो अहमद रजा मेरे साथ खेल गया।
आपने उस कियानूश के दस्तखत को, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि आपका भांजा है, बैंक में क्यों नहीं दिया ताकि वो पैसा निकाल कर कस्टमर को वापस कर देता? आखिर वो आपका भांजा था। अहमद रजा बाबाई से कहीं ज्यादा भरोसा आप उस पर कर सकते थे।
नहीं, नहीं किया जा सकता था।
क्यों?
इसलिए कि कियानूश को जुआ खेलने की लत है। वो अपनी मां की सारी जमा पूंजी और दौलत को जुए में लुटा बैठा है। वो जुए का आदी है। उस पर भरोसा नहीं कर सकता था।
क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका भांजा अहमद रजा बाबाई से धोखा खा गया? मेरा मकसद इस जाल में फंसने से है।
हाँ, मुझे यकीन है।
इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह यह है कि मैं खुद भी धोखा खा चुका हूं।
आप इस साल की 15 शाबान को कहां थे? मेरा मकसद रात के आखिरी पहर।
मैं ज्यादा मजहबी इंसान नहीं हूं।
मेरा मकसद इसी महीने की 10 तारीख तकरीबन 10:30 बजे रात को आप कहां थे?
अस्पताल में अपनी बीवी के सराहने, जर्मनी में था।
मगर शाहिदीन का कहना है कि निसफ शाबान की उस रात को आप इसी गाड़ी में सवार होकर अहमद रजा से मुलाकात करने गए और उसको सवार करके ले गए। उस रात के बाद से अहमद रजा का कोई सुराग नहीं है।
मुझे देखा?
वाज़ेह है कि गाड़ी आपकी थी।
मतलब यही गाड़ी और यही नंबर प्लेट को?
तकरीबन यही मॉडल और यही रंग था।
यह गाड़ी कोई मखसूस गाड़ी नहीं है जो दूसरी जगह ना पाई जाती हो? इस तरह की और इस रंग की ईरान में शायद हजारों गाड़ियां हो।
हाँ, कुछ ऐसा ही है। हेलो।
सलाम जनाब, हमने पता लगा लिया है कि इस महीने की 10 तारीख को शाइस्ता जर्मनी में ही थे। ये बात उनकी पासपोर्ट पर लगी मोहर की तारीख से ही पता चलती है कि ये 13 तारीख को तेहरान में दाखिल हुए हैं।
ठीक है। किसी और के पास इस गाड़ी की चाबी थी जो इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सके?
कोई ऐसा काम क्यों करेगा? इस गाड़ी में ऐसी कोई खास बात तो नहीं है।
जब आप ईरान वापस आए तो जमीन के वक्फी होने की बात किसी को क्यों नहीं बताई?
मैं डर गया था, अगर मुंह खोलता तो मुसीबत आ जाती। दूसरे दिन जब मेरी बीवी चल बसी, मैं पूरी तरह उलझन में था। मैं पूरी तरह डूब चुका था इंस्पेक्टर। बीवी की मौत, जमीन का पैसा, लोगों का पैसा, एक तरफ नहीं हर तरफ से फंस चुका था।
बहरहाल कर्जदारों की तरफ से मुकर्रर वकील को इस बात की खबर होनी चाहिए।
अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है इंस्पेक्टर, गुजर चुका है।
सलाम जनाब।
सलाम।
एक चीज नहीं, मतलब दो चीज।
तो फिर दूसरे से शुरू करो।
आपने कहा था कि अहमद रजा बबाई के दोस्तों और दुश्मनों की फहरिस्त तैयार करूं। सब कुछ इसमें है। सिर्फ एक आदमी है जिससे बात नहीं हो सकी, वो अहमद रजा बबाई का भाई है। वो भी ईरान में नहीं है, कुवैत में है। भाई के साथ भी ज्यादा ब्रादराना ताल्लुकात नहीं है।
ये कावे शाइस्ता के ग्रुप में भी है और अहमद रजा का भी दोस्त है। इधर से भी उधर से भी फायदा उठा रहा है। क्यों?
वल्ला क्या कह सकता हूं।
आप पहला क्या है बताओ।
वो 22 चेक जो अब्बास फरहानी के अकाउंट में डाले गए पैसे के बाबत सादिर हुए थे, वो पूरे 22 चेक सोने की 16 दुकानों में खर्च हो गए हैं। मतलब उन सब चेक के पैसों से खालिस सोने के बिस्किट खरीदे गए हैं। दर हकीकत इन बिस्किट के जरिए पैसों को कैश में बदला जा चुका है। ये भी एक तरह का सौदा है ना।
जिन सोने की दुकानों से बजरिया चेक खरीदारी हुई है उनकी लिस्ट तैयार हुई?
जी, उन सब की लिस्ट आ चुकी है।
तो फिर काम बांट लेते हैं। 8 का मैं पता लगाऊं और 8 का तुम।
जनाब, हमको इस गर्मी में वहां जाने की क्या जरूरत है। जनाब, उन सबको यहीं पर बुला लेते हैं। क्यों?
हाँ, सोचा तो अच्छा है। तो फिर एक काम करो, 8 का तुम जाकर पता लगाओ और बाकी 8 को मेरे ऑफिस में भेज देना, ठीक है?
जी, अच्छी बात है। ठीक है,
या अल्लाह, मकान मालकन, कंबर खानम, कंबर खानम, कहाँ हो मोहतरमा?
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
ये जनाब वली हैं, मोहतरमा खुजस्ता के वालिद।
कैसे हैं? खुशामदीन।
बहुत बहुत शुक्रिया।
तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटी? पुणे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे का रंग उड़ा है। उसे दवा दें या डॉक्टर के पास ले जाएं?
मुझे पता है उसको क्या हुआ है। वो बीमार बनी है। वो बीमारी का बहाना करके खुद को बचाना चाहती है। कई हफ्ते में एक मरतबा उसको दर्द की दवा देनी पड़ती है। अभी उसका वक्त आ गया है, तुम बीच में मत पड़ो।
बेटी तुम रुक जाओ, वो आपस में निपट लेंगी। आइए आइए, तशरीफ लाइए।
तशरीफ लाएं, एक मुलाजिम का मकान है, रिटायर मुलाजिम का।
हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है।
आइए तशरीफ लाइए।
खुश आमदीद। मोहतरमा कंबर, चाय का बंदोबस्त करो।
जी बहुत अच्छा। पागल हो गई है वो, उसको अकेला छोड़ दो, जी खाली कर लेने दो, सुकून मिलेगा।
जब तक उसको सुकून आएगा मैं तो डर के मारे मर जाऊंगी। तुम तो ठीक हो, फिर ये क्या कह रही है? मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं, वो बैग मुझे दे दो, मैं अपनी बहन के घर चली जाती हूँ।
क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? झगड़े से पहले तो तुम्हारा ही था ना। मुझे लेकर तुम लोगों का झगड़ा हुआ है तो मैं ही ठीक करूंगी, तुम नीचे जाओ।
मैं यहाँ नहीं सो सकती, वो सभी बल्ब को तोड़ रही है, अंधेरे में मेरा दम घुटता है।
तुम्हारा काम क्या है?
क्या
तुम दोनों का झगड़ा तुम्हारे काम को लेकर है ना?
नहीं। हाँ हाँ, मैं टाइपिस्ट हूँ, वो कहती है कि मुझे अपनी कंपनी में काम दिलाओ, मैं नहीं दिला सकती, इसी बात पर हमारा झगड़ा है। वो सोचती है कि मैं दिला सकती हूँ और नहीं दिला रही हूँ।
जाओ जाओ, उसे मैं संभाल लूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बल्ब ला दीजिए। मैंने ये नहीं सुना कि कहीं लिखा हो कि अगर एक आदमी किसी दूसरे के लिए सूदमंद ना हो तो उसका गुनाह किसी दूसरे के नाम पर लिखा जाए। लेकिन ये जरूर सुना है कि लिखा हुआ है कि अगर दूसरे के लिए नुकसान दे हो तो गुनहगार है। तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के लिए मेरा नुकसान वो झगड़ा था जो शुरू हुआ मेरी वजह से, मेरी और मेरे डैड की मौजूदगी की वजह से। मैं ठीक हूँ, मेरे पेट में बच्चा भी ठीक है, मेरे डैड कंबर खानम के कमरे में बैठे हैं, इसलिए सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है। इसलिए झगड़ा जारी रहने की कोई वजह नहीं, ठीक?
बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। लीजिए जनाब वली, नोश फरमाइए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कंबर खानम, तुम्हारा भी शुक्रिया। दही घर की बनी हुई है, बहुत लजीज है।
जानम मेरी बच्ची, इसे थामो।
तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना लजीज दूध तैयार किया है।
शायद इसके पेट में दर्द है।
बेटी बेटी, रो मत, मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं।
डैड, ये आंखें किसकी हैं?
नहीं जानता।
इसे आईने पर किसने चिपका दिया?
नहीं जानता।
सलाम। बाबा खान ने फोन किया था, कहा था कि जाकर ले आऊं झूला आपकी पोती के लिए।
सलाम डैग।
सलाम।
कमरे में आओ, तुमसे काम है।
कावे तुम्हारा शुक्रिया।
ये क्या है? आज इस घर में कौन आया था?
वही हर रोज वाले लोग।
हर रोज आने वालों का नाम है कि नहीं?
वही मैं, फातिमा और रोया। कावे भी तो अभी अभी आया, आपने देखा। हुआ क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। असल में ये दो आंखें हैं क्या? अरे क्या बच्ची है, चांद है चांद। मुझे दो, देखूं तो। हाँ, इसकी आंखें कितनी काली है। दो ना बाबा। अरे इस बाप की बेटी को जरा देखने तो दो। ओह मेरे खुदा, इसके हाथ तो देखो, हाथ तो देखो। अरे 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 जानम, अपने बाबा की जान है।
मगर इसके कान में अजान कौन कहेगा?
हाँ जो सेंट टाइल्स वाले,
तुम्हारे उस्ताद।
हाँ।
तुम्हारे डैड बच्ची को देखने नहीं आएंगे?
उन्हें इतने छोटे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है।
बाबक तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल ही नहीं आता।
क्या हाल है?
सलाम अलैकुम।
माफ करें थोड़ी देर हो गई।
कोई बात नहीं, इजाजत दें। देर कर दी।
देखो जरा।
किसको देखूं, रोया को या बच्ची को?
बाबक की बेटी को।
मुझे यकीन नहीं होता कि बाबक इस कदर बड़ा हो गया है कि बाप बन जाए,
लेकिन बन गया। बताओ तुम्हारा दिल चाहता है कि बाबक की बेटी को बड़ा करो या नहीं? वो तुम्हारी जानमाज़ याद है जो तुम्हें जान से भी प्यारी थी, जो अचानक गुम हो गई।
हाँ, पुरानी थी, करबला की थी। करबला की इसलिए कह रही हूँ कि नए कि आजकल जिस तरह लोग जाते हैं कार, बस या हवाई जहाज के जरिए, ये तब की बात है जब कार में जाते थे, ऊँट और ऊँट की सवारी थी और करबला तक का लंबा रास्ता। वो तुम्हारा काम था, तुमने जानेमाज खो दी थी।
हाँ, हाँ। बाबा को रोया के सर पर हाथ फेरने वाले सभी थे, तुम, उनकी माँ, बाप, फ्लोर आंटी, लेकिन मैं बस अकेला था, तुम और तुम्हारे ये हाथ। तो मुझे जलन होती थी कि तुम बाबक को प्यार करती हो, इसलिए जानवाज उठाकर गायब कर दी कि ताकि तुम सोचो कि बाबक ने की है और तुम उसे चाहना बंद कर दो। पर फिर भी तुम उसे चाहती थी।
एक हाथ तुम्हारे सर पर भी रहा करता था,
मगर मैं पूरी तरह तुम्हारा प्यार चाहता था।
मैंने तुम्हें भी परवेज के बच्चों की तरह पाल कर बड़ा किया। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में थी, अब भी है। जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है।
मगर मैं बिल्कुल अकेला था। बचपन और इतने बच्चों के सामने होते हुए इस कदर अकेलापन। नरगिस जान, आपके अलावा मेरा कोई ना था, इसलिए जलन होती थी।
मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम्हें यतीमी का एहसास ना हो, मगर मेरे बच्चे अभी तक शाइस्ता के आगे पीछे रहते हो। जब इसको देखकर तुम्हारे दिल को तकलीफ होती है, आंखों में खून उतर आता है, बचपन की याद सताती है, अकेलापन याद आता है, तो वो सब जो तुमको पसंद नहीं था तो क्यों रहते हो?
क्योंकि रोया को चाहता हूं। चलता हूं, सो जाओ।
जरा संभल के, यहां अंधेरा है, चोट ना लग जाए। माफ कीजिएगा, खाना आपके लायक नहीं था।
कैसी बातें करते हैं?
जरा संभल के। आइए आइए आइए। खुश आमदीद।
बहुत बहुत शुक्रिया।
बस ठंडे पानी की कमी है, अभी आपकी खिदमत में लाता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया की कोई बात नहीं।
जब कभी आपकी जगह बदलती है तो आपको नींद नहीं आती।
जानती हो हमारे शहर में क्या हवा उड़ रही है? कहते हैं अहमद रजा ने दूसरी शादी कर ली है और वली की बेटी तेहरान गई है। लोग ये कह रहे हैं कि नौबत शिकायत और केस दर्ज करने तक पहुंच गई है, इसलिए अहवास तक पुलिस अहमद रजा को ढूंढती हुई आई है।
ये लोग हैं डैड, इनका काम ही है बातें करना, वक्त गुजारने को कुछ तो चाहिए ना।
तुम्हें बताया, अहमद रजा के भाई ने बस खरीद ली है।
एक बस तो छोड़ें, माशाल्लाह चार चार बसें हैं, तेहरान अहवाज, तेहरान इस्फहान, तबरेज, अहमद रजा ने बताया था।
अगर अहमद रजा को बाप की मीरास मिल गई होती तो अहवाज में खुद का ही कोई कारोबार कर लिया होता तुम्हारे शौहर ने, फिर ना तो तेहरान आने की जरूरत पड़ती और ना ही ये मुश्किल पेश आती। क्या इसके अलावा कुछ है बेटी?
नहीं मालूम।
हक लेने वाली चीज है बेटी, चाहे काम क्यों ना हो। ये मेरा कहना नहीं है, ये पैगंबर के जानशीन का कहना है। अगर अहमद रजा गया होता तो घर में से बाप का हिस्सा ले लिया होता,
पितरी हिस्सा भी कम नहीं था, मगर नहीं चाहता था कि भाई के खिलाफ शिकायत और झगड़े हों।
क्या ये अच्छी बात है?
अच्छा या बुरा ये उनका घरेलू मसला था, वो जाने। और उसका भाई क्यों डैड, घर उसके वालिद का था, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था और ना ही मैं बढ़ी। झगड़ा बाप के घर का नहीं था, वो तो सलीम के लिए मामूली था। झगड़ा दूसरी बात पर था जो बाप के घर तक पहुंच गया। असली झगड़ा उस जमीन को लेकर था जिसको उनके बाप ने शहर के मदरसे के नाम वक्फ कर दिया था और सलीम नहीं मान रहा था, मगर अहमद रजा का कहना था कि बाप की वसीयत पर अमल होना चाहिए।
उस सलीम ने अपने लिए सब कुछ बना लिया है। उसकी लड़की तेहरान यूनिवर्सिटी में चुन ली गई है, उसका लड़का फुटबॉल टीम में चुन लिया गया है, बीवी बच्चे तेहरान आ गए हैं, खुद कभी यहां तो कभी कुवैत में रहता है।
बीवी बच्चे तेहरान में?
जबी बता रहा था।
जबी कौन है?
जबी अहमद रजा के अम्मू का लड़का है।
तो ये लोग तेहरान में हैं, मैं नहीं जानती थी।
मैं तुम्हारे शौहर के भाई की बस से ही आया हूं, उसके ड्राइवर का हेल्पर जबी ही है।
वो तो कुरियर में काम करता था ना?
हाँ बताया था, एक दो मर्तबा उसने अहमद रजा का चेक इधर उधर किया भी था। बस पर काम करने के जुनून में बस पर काम करने आ गया। जब ही बता रहा था कि लगता है अहमद रजा और सलीम में सुलह सफाई हो गई है।
सच में?
क्या तुम नहीं जानती थी?
अहमद रजा ने मुझे कुछ बताया नहीं।
जब ही बता रहा था कि अहमद रजा एक मर्तबा सलीम के घर गया भी था।
ये सब बातें जवी को कैसे मालूम हुई?
नरीमान बता रहा था। नरीमान सलीम के मामू का बेटा है, बता रहा था कि जब सलीम तेहरान आया था तो उसने अहमद रजा के घर का पता लेने आया था, तब बताया। जबी बता रहा था कि उसने नरीमान से सुना कि वो अहमद रजा को भी कुवैत ले जाना चाहता है।
लगता है आप मेरा कुछ लिहाज कर रहे हैं, कुछ आपके दिल में है जो जवाब नहीं आ पा रहा है। अहमद रजा पर से आपका भरोसा उठ गया है। जब वो मेरा रिश्ता लेकर आया था तो आपने कहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बस इतना कि वो नमाज जानता है, खुदा को पहचानता है, तो ऐसा लगता है सब कुछ है। आपको याद है?
बेटी ये बात तो अभी भी कहता हूं, मगर खुदा ना खास्ता मोमिन से कोई गलती हो जाए तो काफिर से ज्यादा तबाकुल होता है। मैं कहता हूं शैतान खुदा की पनाह शैतानी वसवसे से। जब से मैंने जबी को देखा है मेरे दिमाग में एक ही बात घर घर गई है, जब कहता हूं शैतान तो शैतान ही है। जब तुमने एक बड़ी रकम जेब में डाल ली जो कि तुम्हारी नहीं है, उस वक्त दिल में शैतानी ख्याल आने लगते हैं। अगर लालच दिल में नहीं भी आई तो लोग लालच दिलाने लगते हैं। बस मैं इसी सोच में डूबा हूं कि कहीं तुम्हारे शौहर के उस भाई सलीम ने, जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अहमद रजा के पीछे पड़ गया हो और लोगों का पैसा ऐंठ लिया हो और किसी तरह से अहमद रजा को कुवैत भेज दिया हो ताकि जब मामला ठंडा हो जाए तो उसे वापस बुला लें। ये मेरी सोच है बेटी, गलती हो सकती है ना।
तेहरान में सलीम के घर का पता किसी को मालूम है? ये सभी कहां मिल सकता है?
कहते हैं जब भी तेहरान आता है टर्मिनल पर चाय की दुकान पर सोता है।
लीजिए ये रहा बर्फ का पानी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया की कोई बात नहीं। ये बताएं आप बाप बेटी ने कब से एक दूसरे को नहीं देखा है? जी हाँ, फरमाइए।
मोहतरमा खुजस्ता बाबाई हैं।
क्या हुआ?
उन्हें बोले कि एक लाश की शिनाख्त के लिए मेरे साथ पोस्टमार्टम ऑफिसर चलना होगा। उन्हें बुलाने की जहमत करें।
वो नहीं आ सकती, उसके पेट में बच्चा है। मैं डरता हूँ।
आप उनके वालिद हैं?
हाँ, मेरे वालिद हैं।
आप मेरे साथ आ सकती हैं?
मैं लाश की शिनाख्त करूंगा।
अगर आ सकती हैं तो बेहतर होगा कि वहीं चलें।
ठीक है,
तो फिर चलिए।
अच्छी बात है।
क्या हुआ बेटी?
چه آرام در خود شکستم، چه دلتنگ تنها نشستم، نشستم به هوای تو، من با تو آرامم پس از این به خدا. I'm